मेरे आत्मीय बंधुओं नमस्कार। आज 27 जुलाई 2017 के SAFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए जो मैंने विषय चुना है उसे अगर आप कोई नाम ही देना चाहें तो आप कह सकते हैं विचारों में बदलाव। हम सबके पास अपने अपने विचार हैं। अब हम सबके सामने साथ विचारों के साथ साथ एक यह भी बड़ी चुनौती है कि हम अपने विचारों को समय के अनुसार कैसे बदलें। मित्रों, जो विचार होते हैं सच पूछे तो परंपरा का रूप धारण करके, अंधविश्वास का रूप धारण करके, संस्कारों का रूप धारण करके, नैतिकता का रूप धारण करके, या यूं कह लीजिए कि जीवन मूल्यों और यहां तक कि धर्म का रूप भी धारण करके हमारे दिल और दिमाग में कुछ इस तरीके से रच बस जाते हैं कि उनमें बदलाव लाना संभव नहीं हो रह जाता, या अगर संभव होता भी है तो बेहद कठिन। मुझे लगता है कि जिंदगी में जो सबसे कठिन काम है, जो सबसे चुनौती भरा काम है, वह है अपने विचारों को बदलना। क्योंकि जैसे ही हम अपने विचारों को बदलते हैं हम बदल जाते हैं, और जैसे हर कोई बदल जाता है समाज, राष्ट्र, दुनिया बदल जाती है। तो मित्रों, आज हम इसी इशू पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, मैं एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। मित्रों, यह वाक्य जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब रहे हैं, इसकी चर्चा उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है अग्नि की उड़ान, उसमें भी उन्होंने इसकी चर्चा की है। इसमें देखिएगा, हालांकि घटना आपको हो सकता है ऊपरी तौर पर इतनी बड़ी न लगती हो कि इसे विचारों के बदलाव से जोड़ा जा सके, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जिस किरदार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना, जिस चरित्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अगर उस चरित्र की जगह पर खुद को रखें और फिर सोचें कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करता, तब सही मायने में हमें उस चरित्र की जो ताकत है, जो उसका प्रभाव है, जो उसका महत्व है, सही रूप में मूल्यांकन कर सकते हैं। अदरवाइज तो लगता है कि ठीक है, कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो मित्रों, देखिए कि कलाम साहब ने एक किस घटना की चर्चा की है अपनी किताब में। दोस्तों, सारा भाई का नाम आपने सुना होगा, हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे, और आज हमारा जो रॉकेट लॉन्चिंग जो स्टेशन है वो सारा भाई, विक्रम भाई, विक्रम सारा भाई के नाम से ही स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, विक्रम सारा भाई को ये लगा कि हमें सैटेलाइट छोड़ना चाहिए, और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार ने उनको सौंप दी। उन्होंने सरकार से उसके लिए परमिशन भी ले लिया कि वो अपना केंद्र कहां बनाएंगे, और विक्रम साराभाई ने फिर अपनी टीम बनानी शुरू की। राइट, देखिए, कोई भी जो बड़ा व्यक्ति होता है वो टीम को महत्व देता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और उसका ये कम बड़ा रोल नहीं है कि वह एक अच्छी टीम बनाए। तो उन्होंने युवा राव साहब को, जो उस समय MIT अमेरिका का जो सर्वोत्तम संस्थान है विश्व का, वहां थे, तो उन्होंने उनको भी बुलाया। मैं जानबूझकर इन छोटी छोटी बातों की भी चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि इसमें भी हमें लाइफ मैनेजमेंट की सफलताओं के सूत्र दिखाई देंगे, है ना। सफलता एक ही चीज से नहीं मिलती कि मैं बड़ा जीनियस हूं तो मुझे सफलता मिल गई, मैं बड़ा मेहनती हूं तो मुझे सफलता मिल गई, नॉट एट ऑल। उसमें बहुत सी बातों का रोल होता है, बहुत सी घटनाओं का रोल होता है, परिस्थितियों का रोल होता है, बहुत से लोगों का भी रोल होता है। हमें इन सबको समझना चाहिए, तब हम अपने व्यवहार और आचरण को बहुत ही संतुलित और बेहतर रख पाते हैं। अदरवाइज तो लगता है कि सब कुछ मैं ही करने वाला हूं, मैं जो चाहूंगा कर लूंगा, और पता लगता है कि कुछ भी नहीं हो पाता। तो मित्रों, उन्होंने UR राव साहब को बुलाया, जिनका निधन अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है। तो दोस्तों, अब देखें कि इनको, सारा भाई को जगह चाहिए थी कि कहां स्पेस रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश किया जाए, तो उन्होंने थुम्बा को चुना। थुम्बा आप जानते हैं, वहां उस स्थान को उन्होंने चुना, सरकार से परमिशन भी ले ली। अब जिस जगह पर, जिस जगह की टेस्टिंग होनी थी, ये सब जहां स्थापित होना था, संयोगवश वहीं वहां एक चर्च था, वहां एक स्कूल था, और जो उस चर्च के बिशप थे, पादरी, जिन्हें आप धर्म गुरु कहेंगे, उनका घर भी था। अब देखिए, तीन चीजें होंगे, चर्च, स्कूल और बिशप का घर। चर्च एक धार्मिक स्थल है, दूसरा स्कूल बच्चों के पढ़ाने का शैक्षणिक स्थल है, वो भी उतना ही संवेदनशील है। फिर बिशप का अपना निवास स्थान भी है। अब आप तीनों चीजें देखिए। अब टेस्टिंग करने के लिए उन्हें पादरी की अनुमति चाहिए थी, मतलब उसमें कुछ ऐसा रहता होगा कि एक्टिविटीज बढ़ेंगी, वो डिस्टर्ब होंगे, या सिक्योरिटी मेजर भी हो सकता है, जो भी हो। तो दोस्तों अब क्या किया जाए, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें हमारे यूआर राव भी थे और खुद कलाम साहब भी थे, इन सब का ग्रुप जाकर के और फादर से मिला। फादर से यह ग्रुप मिला और उन्होंने अपनी बात रखी और फादर ने यह कहा कि ठीक है, आप अगले संडे की शाम को मुझसे आकर के मिलिए। अब जब संडे आया तो फादर ने क्या किया, देखिए फादर ने किया ये कि वहां जितने भी लोग इकट्ठे थे उनके सामने उन्हें, खासकर आप देखेंगे वो बाइबल की बातें बताते हैं, एक तरीके से उपदेश होता है संडे को, और इसके बाद फिर वो सामूहिक प्रार्थना होती है। तो दोस्तों वहां उन्होंने जो भी बात कही हो उसके साथ ही साथ यह भी कहा, वहां जितने लोग इकट्ठे हुए थे, कि देखिए यहां पर हम बिजली है हमारे इस चर्च में माइक है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, जितनी भी चीजें हैं ये सब के सब साइंस की देन है, ये विज्ञान की देन है। इसलिए पहली बात तो यह है कि भारत सरकार की यह टीम जो यहां एस्टेब्लिश करने जा रही है, हम उसके सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम अपनी यह जगह उस केंद्र के लिए देते हैं। मित्रों सभी लोगों ने अपनी स्वीकृति दे दी और वह जगह इन लोगों को सौंप दिया गया और वहीं आज हमारा यह थुम्बा का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थित है, जहां चर्च था, जहां स्कूल था, जहां स्वयं बिशप का घर था। मित्रों अब जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूं, अब आप इसे विचारों के बदलाव से जोड़कर देखिए। यह विचारों का बदलाव नहीं है, यह तो एकदम विचारों के उलट है। देखिए जब भी हम विचारों के बारे में बात करते हैं, किसी बदलाव के बारे में बात करते हैं मित्रों, तो हमें यह समझना चाहिए कि उसकी तीन स्थितियां होती है, उसके तीन रूप होते हैं। पहला तो रूप यह होता है कि हम उसमें सुधार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक मकान है, पुराना पड़ गया है, टूट फूट हो रही है, तो मैंने अपना मिस्त्री बुलाया और जो टूट फूट हो रही है उसको ठीक ठाक कराया, रंग डोगन भी करा दिया, पॉलिश वॉलिश भी करा दी, पुतवा भी दिया, तो वो दिखने तो नया लगा, लोगों को लग रहा है कि यार ये घर तो नया जैसा है, लेकिन उसकी चीजें पुरानी है, उसकी दीवारें पुरानी है, नींव पुरानी है, सब चीजें पुरानी है, लेकिन सुधार मैंने कर लिया, थोड़ा सा रहने लायक हो गया या अच्छा रहने लायक हो गया, लेकिन यह बदलाव नहीं हुआ, यह सुधार हुआ। ठीक है, थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ करके जरूरत के हिसाब से थोड़े से कमरे उमरे भी बदलवा लिए, यह है सुधार। दूसरा होता है फ्रेंड्स कि हम पहले तो ध्वस्त करते हैं चीजों को, नष्ट करते हैं, मैंने इस मकान को गिरा दिया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ नए की अवधारणा ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मैं इस पर खड़ा क्या करूंगा, कैसे करूंगा, उसका नक्शा क्या होगा, सच पूछे तो मुझे अपनी जरूरत ही नहीं मालूम है। तो क्या है कि मैंने जो था उसको गिरा दिया, लेकिन नया कुछ बनाने की मेरी औकात नहीं है, क्षमता नहीं है, और मैं उस पर कुछ भी नया नहीं बना रहा हूं, और मैं क्रांतिकारी अपने आप को सिद्ध कर रहा हूं कि देखो मैंने पुराने को नष्ट कर दिया। ठीक है, स्वागत है आपका, लेकिन नया बनाया क्या। मित्रों जो हमारे नक्सलाइट जो लोग हैं, नक्सलवादी जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ ध्वस्त करने में लगे हुए, सड़कें नष्ट कर दो, फलाना आग लगा दो, सरकारी संपत्ति फूंक दो, लोगों को मारो। आप बना क्या रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, लोगों के जीवन को सुधार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये दूसरा है कि वो कहते हैं कि हम नए विचारधारा के हैं, हम एक अलग विचार लेकर के आए हैं, हमारे पास लेनिनवादी विचारधारा है, माओवादी विचारधारा है, कम्युनिस्ट विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा है, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। ठीक है, वो विचार अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण है, हमारे चेतना की बहुत जबरदस्त विरासत है, वो धरोहर है हमारी, लेकिन वो ध्वस्त करने तक ही सीमित नहीं थे, वो ध्वस्त करना चाहते थे, डेफिनेटली वो पुरानी व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे ताकि उस पर एक नई व्यवस्था खड़ी कर सके, जो नक्सलाइट मूवमेंट के पास नहीं है, वो अपने को मूवमेंट कहते हैं, एक आंदोलन कहते हैं, तो कैसा आंदोलन। मित्रों जो तीसरी स्थिति होती है वो ये है कि आप पुराने को नष्ट करते हैं, उसका मलबा साफ करते हैं, जमीन वही रहती है, जमीन नहीं बदली है, जमीन वही रहती है, और उस पर नई जरूरत के हिसाब से फिर आप एक नई इमारत खड़ी करते हैं, और वह हमारे लिए ज्यादा मुफीद होती है, वह हमारे ज्यादा अनुकूल होती है। ये जो दूसरी जो तीसरी जो स्थिति है जिसकी चर्चा भी मैंने की, ये क्रांतिकारी स्थिति होती है। ये अंदर घटने वाली एक ऐसी घटना होती है जिसमें जमीन तो पुरानी है, हमारे संस्कार पुराने हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल परंपराओं से अलग हो गए हैं, जड़ें तो उस जमीन में ही होंगी ना, नींव तो उस जमीन में ही है। अगर हम बगीचे का रूप दे दें, पेड़ पौधों का रूप दे दें, तो जो मिट्टी है उन पेड़ और पौधों की जड़ों को संभालने वाली, पोषण देने वाली, वह तो जमीन तो वही है ना, मिट्टी वही है। उस पर अब हम नए तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से नई मांग के अनुकूल फसल पैदा कर रहे हैं। यह सर्वोत्तम बदलाव होता है, सबसे ज्यादा बदलाव कि हम अपनी जड़ों से भी जुड़े रहते हैं, अपनी जमीन से भी जुड़े हुए हैं और आसमान की ऊंचाइयों तक भी पहुंच रहे हैं। अब आप देखिए मित्रों को, यहां जो फादर ने जो डिसीजन लिया, सोच करके देखिए कि चर्च और बिशप का जो निवास है, स्कूल है, इस सबसे लोग इमोशनली जुड़े रहते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। इनके नष्ट होने का, इनको ध्वस्त करने का ऐसा मतलब होता है जैसे कि उनके अंदर से कुछ नष्ट किया जा रहा हो, उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फादर की चेतना देखिए कि उन्होंने एक सार्वजनिक हित के लिए, क्योंकि उनको दिख रहा था कि इससे बहुत बड़ा हित साधना है, और केवल किसी राष्ट्र का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति का बहुत बड़ा हित साधना है, और जो धर्म है उसका उद्देश्य क्या है, मानव जाति का भला करना, यही तो है। मतलब व्यक्ति को इस लायक बनाना कि उसका अपना भला हो सके और साथ ही साथ वह दूसरों का भला कर सके, यही धर्म का मूलभूत उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को यह वैज्ञानिक केंद्र ज्यादा बड़े स्तर पर पूरा कर रहा है, तो यह भी धर्म का ही काम है। फर्क यह है कि हम चर्च के माध्यम से कर रहे हैं और ये थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के माध्यम से करेंगे। काम एक ही कर रहे हैं, रास्ते अलग अलग हैं। तो मित्रों, किस तरीके से उन्होंने, आप देखिए कि अपने विचारों में बदलाव ला करके एक धर्म की नई परिभाषा बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिखे स्थापित कर दी। तो मित्रों, मुझे यह घटना बहुत बहुत भाई थी और बड़ी प्यारी लगी थी। और अब जबकि यूआर राव जी का अभी अभी देहावसान हुआ है, मुझे लगा कि उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में, क्योंकि वो इस टीम में शामिल थे, उस घटना की चर्चा करना अधिक प्रासंगिक भी होगा और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख तो होगी ही। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।